नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Na Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द डेटा वेयरहाउस टूलकिट। राल्फ किम्बल और मार्गी रॉस की डेटा वेयरहाउस तथा बिजनेस इंटेलिजेंस पर केंद्रित व्यावहारिक संदर्भ पुस्तक है। इसका तीसरा संस्करण वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ था और यह किम्बल पद्धति के अंतर्गत डायमेंशनल मॉडलिंग को व्यवस्थित रूप से समझाता है। पुस्तक का मूल उद्देश्य ऐसे विश्लेषणात्मक डेटाबेस डिजाइन करना है जिन्हें व्यावसायिक उपयोगकर्ता सहजता से समझ सकें और जिन पर प्रश्नों का उत्तर तेज गति से मिले। यह परिचालन प्रणालियों के सामान्यीकृत लेन देन डेटा से अलग रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए स्टार स्कीमा आधारित संरचनाओं पर ध्यान देती है। लेखक पहले फैक्ट डायमेंशन, ग्रीन सरोगेट की और डेट डायमेंशन जैसे आधारभूत निर्णयों की चर्चा करते हैं, फिर इन्वेंटरी, खरीद, ऑर्डर प्रबंधन, लेखांकन, ग्राहक संबंध और अन्य क्षेत्रों के उदाहरणों से जटिल स्थितियां समझाते हैं। पुस्तक केवल तालिकाओं का तकनीकी खाका नहीं देती, बल्कि बिजनेस स्टेकहोल्डरों के साथ मॉडलिंग, कॉन्फर्म डायमेंशनों द्वारा एकीकरण और ETL द्वारा मॉडल को भरोसेमंद ढंग से भरने की प्रक्रिया भी रखती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ग्रीन तय करने से शुरू होने वाला स्टार स्कीमा डिजाइन। पुस्तक का सबसे केंद्रीय अनुशासन यह है कि किसी फैक्ट टेबल को बनाने से पहले उसका ग्रेन, अर्थात एक पंक्ति किस एकल व्यावसायिक घटना या मापन को दर्शाती है, स्पष्ट किया जाए। उदाहरण के लिए, बिक्री फैक्ट का ग्रेन एक ऑर्डर, ऑर्डर की एक लाइन या प्रतिदिन किसी उत्पाद का कुल हो सकता है। ये विकल्प देखने में समान लग सकते हैं, पर इनसे उपलब्ध विश्लेषण, मापों की व्याख्या और टेबलों के बीच संबंध बदल जाते हैं। किम्बल और रॉस पहले ग्रेन घोषित करने, फिर उस ग्रेन पर लागू डायमेंशन पहचानने और अंत में तथ्यों को चुनने का क्रम सुझाते हैं। इससे एक ही टेबल में अलग स्तर के आंकड़े मिलाने की गलती घटती है। स्टार स्कीमा में केंद्र की फैक्ट टेबल संख्यात्मक माप और डायमेंशन की रखती है, जबकि आसपास की डायमेंशन टेबलें ग्राहक, उत्पाद, स्थान और समय जैसे वर्णात्मक संदर्भ देती है। यह संरचना उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों के अनुकूल होती है, क्योंकि वे मापों को परिचित व्यावसायिक विशेषताओं के अनुसार छांट और समूहित कर सकते हैं। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि फैक्ट और डायमेंशन का अंतर केवल तालिका के आकार का अंतर नहीं है। तथ्य किसी प्रक्रिया की मापनीय घटना है, जबकि डायमेंशन उस घटना को अर्थ देने वाली भाषा है। इसलिए सही ग्रेन, रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आगे के विस्तार दोनों की नींव बनता है। दूसरा, कॉन्फर्म डायमेंशन और बस मैट्रिक्स से उद्यम स्तर का एकीकरण। किम्बल पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान कॉन्फर्म डायमेंशन की धारणा है। किसी उद्यम में बिक्री, इन्वेंटरी, खरीद और ग्राहक सेवा अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन यदि वे ग्राहक, उत्पाद, तिथि या स्थान को अलग परिभाषाओं में रखती है तो संयुक्त रिपोर्टें विरोधाभासी हो जाती है। कॉन्फर्म डायमेंशन का अर्थ है कि साझा डायमेंशन की परिभाषा, गुण, मान और कुंजी अलग फैक्ट टेबलों में संगत रहे, तब अलग अलग बिजनेस प्रक्रियाओं के मापों को एक ही विश्लेषणात्मक संदर्भ में रखा जा सकता है। पुस्तक बस आर्किटेक्चर और बस मैट्रिक्स के माध्यम से इस विचार को योजना में बदलती है। मैट्रिक्स की पंक्तियों में बिजनेस प्रक्रियाएं और स्तंभों में डायमेंशन रखे जाते हैं। इससे टीम को दिखता है कि कौन से डायमेंशन साझा है, किनकी प्राथमिकता अधिक है और कौन से डेटा मार्ट मिलकर व्यापक वेयरहाउस बनाएंगे। यह दृष्टि बड़े, एकमुश्त केंद्रीकृत निर्माण और पूरी तरह अलग थलग डेटा मार्ट दोनों के बीच व्यावहारिक रास्ता देती है। प्रत्येक प्रक्रिया अपने फैक्ट टेबल के साथ क्रमिक रूप से जोड़ी जा सकती है, बशर्ते साझा डायमेंशन पहले से नियंत्रित हो। पुस्तक का तर्क है कि तकनीकी एकीकरण से पहले अर्थ का एकीकरण जरूरी है। यदि तिथि, ग्राहक या उत्पाद की व्यावसायिक परिभाषा असंगत है तो केवल डेटा जोड़ देने से भरोसेमंद विश्लेषण नहीं बनता। तीसरा, धीरे बदलती डायमेंशनों में इतिहास और वर्तमान का संतुलन। ग्राहक का पता, उत्पाद की श्रेणी, कर्मचारी का विभाग या विक्रेता का क्षेत्र समय के साथ बदल सकता है। पुस्तक इन्हें धीरे बदलती डायमेंशन की समस्या के रूप में रखती है, क्योंकि विश्लेषण को कभी वर्तमान स्थिति चाहिए होती है और कभी उस समय का ऐतिहासिक संदर्भ। यदि पुराने मान को सीधे बदल दिया जाए तो पुराने लेन देन अनजाने में नई स्थिति से जुड़ जाएंगे। यदि हर छोटे परिवर्तन को असीमित रूप से अलग रखा जाए तो उपयोग और रखरखाव कठिन हो सकता है। किम्बल और रॉस विभिन्न परिवर्तन प्रकारों 0 से 7 तक का विस्तृत ढांचा देते हैं। इनमें परिवर्तन न मानना, पुराने मान को अधिलेखित करना, नया डायमेंशन रिकॉर्ड बनाकर इतिहास सुरक्षित रखना, सीमित पुराना मान अलग गुण में रखना और कुछ मिश्रित उपाय शामिल हैं। सबसे परिचित दूसरा प्रकार नए सरोगेट की के साथ नया रिकॉर्ड बनाता है, ताकि फैक्ट उस समय प्रभावी संस्करण से जुड़ सके। सरोगेट की यहां केवल प्राकृतिक पहचानकर्ता का विकल्प नहीं है, वह स्रोत प्रणाली की बदलती कुंजियों और व्यावसायिक पहचान को विश्लेषणात्मक इतिहास से अलग करने का साधन है। पुस्तक किसी एक प्रकार को हर जगह लागू करने के बजाय रिपोर्टिंग की आवश्यकता पूछने पर जोर देती है। क्या उपयोगकर्ता पुराने लेन देन को पुराने ग्राहक क्षेत्र से देखना चाहता है या आज के क्षेत्र से? इस प्रश्न का उत्तर ही परिवर्तन नीति और ईडीएल तर्क निर्धारित करता है। चौथा, जटिल संबंधों, तेजी से बदलते गुणों और मापों के लिए उन्नत पैटर्न। पुस्तक यह स्वीकार करती है कि हर व्यावसायिक स्थिति साधारण स्टार स्कीमा में नहीं समाती। बहुमूल्य विशेषताएं और परिवर्तनीय गहराई वाली पदानुक्रम ऐसी स्थितियां हैं जहां एक तथ्य का कई डायमेंशन सदस्यों से संबंध हो सकता है। इनके लिए ब्रिज टेबल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि संबंध को स्पष्ट रखा जाए और गलत डबल काउंटिंग से बचा जा सके। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि ब्रिज के साथ रिपोर्टिंग तर्क को सावधानी से बनाना पड़ता है, क्योंकि एक ही तथ्य कई पंक्तियों के माध्यम से दिखाई दे सकता है। तेजी से बदलने वाले और बहुत बड़े ग्राहक गुणों के लिए मिनी डायमेंशन उपयोगी हो सकती है। यह अस्थिर गुणों को मुख्य ग्राहक डायमेंशन से अलग रखकर परिवर्तन प्रबंधन को नियंत्रित करती है। वही छोटे कम कार्डिनलिटी वाले संकेतकों जैसे विभिन्न हां या नहीं झंडों के संयोजन को जंक डायमेंशन में रखा जा सकता है। इससे फैक्ट टेबल में अनेक बिखरे संकेतक रखने के बजाय उनका अर्थ संगठित होता है। मापों के संदर्भ में पुस्तक पूर्ण योगात्मक, अर्ध योगात्मक और गैर योगात्मक तथ्यों का अंतर महत्वपूर्ण बताती है। बिक्री की मात्रा को समय और अन्य डायमेंशनों में जोड़ा जा सकता है, पर किसी दिन का स्टॉक स्तर समय में जोड़ने योग्य नहीं होता। ऐसे मामलों में औसत, अंतिम स्थिति या अलग गणना चाहिए। यह अंतर गलत डैशबोर्ड और भ्रामक कुलों से बचाता है। अंत में सहयोगी मॉडलिंग सत्र और ईटीएल को डिजाइन का अनिवार्य भाग मानना। द डेटा वेयरहाउस टूलकिट में मॉडलिंग को केवल डेटाबेस विशेषज्ञ का एकांत कार्य नहीं माना गया है। लेखक बिजनेस प्रतिनिधियों और तकनीकी टीम के साथ सहयोगी इंटरैक्टिव डिजाइन सत्रों का समर्थन करते हैं। इन सत्रों में वास्तविक व्यावसायिक प्रक्रियाएं, उनके मापन, शब्दावली, घटनाओं का स्तर और रिपोर्टिंग प्रश्न सामने आते हैं। इसका लाभ यह है कि मॉडल वास्तविक निर्णयों की भाषा में बनता है, न कि केवल उपलब्ध स्रोत तालिकाओं की भाषा में। स्रोत प्रणाली किस तरह डेटा रखती है, यह उपयोगी जानकारी है, लेकिन वही विश्लेषणात्मक संरचना तय नहीं कर सकती। तीसरे संस्करण में एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड अर्थात ईडीएल पर भी पर्याप्त ध्यान है। डायमेंशनल मॉडल की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसकी लोडिंग प्रक्रिया। ईडीएल को स्रोत डेटा निकालना, साफ करना, मानकीकृत करना, सरोगेट की सौंपना, डायमेंशन परिवर्तनों को संभालना और फैक्टों को सही डायमेंशन रिकॉर्डों से जोड़ना पड़ता है। पुस्तक विभिन्न ईटीएल उपप्रणालियों और डिजाइन विचारों की समीक्षा करती है, जिससे मॉडल और डेटा पाइपलाइन को अलग समस्याएं मानने की भूल कम होती है। यह दृष्टिकोण खास तौर पर तब महत्वपूर्ण है जब स्रोतों में देर से आने वाला डेटा, बदली हुई पहचान, अपूर्ण गुण या असंगत कोड हो। इस प्रकार पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि स्पष्ट मॉडल, साझा व्यावसायिक परिभाषाएं और नियंत्रित ईटीएल तीनों मिलकर उपयोगी वेयरहाउस बनाते हैं। निष्कर्ष में यह पुस्तक डेटा इंजीनियरों, एनालिटिक्स इंजीनियरों, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपरों, डेटा आर्किटेक्टों, डेटाबेस पेशेवरों और उन प्रबंधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें रिपोर्टिंग प्रणालियों की संरचना समझनी है। रिलेशनल डेटाबेस का कुछ आधार होने पर पाठक इसकी तकनीकों को अधिक आसानी से लागू कर सकता है। लेकिन पुस्तक केवल एसक्यूएल या किसी एक टूल की जानकारी पर निर्भर नहीं करती। इसका प्रमुख लाभ यह है कि यह डिजाइन निर्णयों को व्यावसायिक प्रश्नों से जोड़ती है। पाठक समझता है कि ग्रेन क्यों पहले तय होता है, इतिहास को कैसे संरक्षित करना है, साझा डायमेंशन क्यों जरूरी है और किन स्थितियों में सरल स्टार स्कीमा के बजाय ब्रिज, मिनी या जंक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। समान विषय की कई पुस्तकें डेटा वेयरहाउस की अवधारणा, सामान्यीकृत उद्यम मॉडल या किसी विशेष तकनीकी प्लेटफॉर्म पर केंद्रित रहती है। किम्बल और रॉस की पुस्तक अलग इसलिए दिखती है क्योंकि यह डायमेंशनल मॉडलिंग की एक विस्तृत, नामित और बार बार लागू की जा सकने वाली तकनीक लाइब्रेरी देती है। इसके विविध उद्योग उदाहरण और बस मैट्रिक्स सिद्धांत को वास्तविक परियोजना योजना से जोड़ते हैं। साथ ही ईडीएल और स्टेक होल्डर सहयोग को शामिल करना इसे केवल स्कीमा डिजाइन की पुस्तक नहीं रहने देता। यद्यपि आधुनिक क्लाउड प्लेटफॉर्म और नए डेटा टूल बदले हैं, स्पष्ट माप, संगत परिभाषा, ऐतिहासिक शुद्धता और उपयोगकर्ता अनुकूल विश्लेषण के सिद्धांत अब भी प्रासंगिक है। इसलिए यह त्वरित परिचय से अधिक लंबे समय तक संदर्भ के रूप में रखी जाने वाली पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं राल्फ किम्बल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।